इसको सीतायन भी कहना चाहिए, क्योंकि ये सीता देवी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत से लेकर अंत तक, जब से सीता देवी का विवाह श्री रामचंद्र से हुआ, आगे चल के सीता देवी का श्री राम के साथ में वनवास में जाना, उसके बाद में सीता देवी के कारण शूर्पणखा के नाक कान आदि काट देना लक्ष्मण द्वारा, फिर सीता देवी का अपहरण और सीता देवी के लिए युद्ध, फिर दोबारा सीता देवी को वनवास में भेजा जाना, वहाँ लव कुश का जन्म होना, तो ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि सीता देवी की भूमिका रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो राम कथा में स्त्रियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, स्त्रियों के कारण बहुत घटनाएं हुई। सबसे पहली बात मंथरा मंथरा ने भड़काया कैकेयी को, कैकेयी भड़क गई, कैकेयी ने अपने दो वरदान मांगे, और आगे चल के फिर सीता देवी वन में गई। वैसे वन में जाना सीता देवी, यदि वन में नहीं जाती सीता देवी तो ये सारी घटनाएं न होती। यदि सीता देवी रह जाती महल में, कैकेयी ने ये तो नहीं मांगा था कि सीता को भी जाना चाहिए, लेकिन सीता देवी ने अपने पतिव्रता धर्म को के अनुसार ठीक समझा कि उसे जाना चाहिए राम के साथ में, लेकिन वो गई और फिर अनेक समस्याएं हुई। तो आगे चल के शूर्पणखा के कारण वास्तव में सारा युद्ध हुआ, न मंथरा के लिए, न कैकेयी के लिए, न सीता के लिए, परंतु शूर्पणखा के लिए, क्योंकि शूर्पणखा पहले आई श्री राम के पास। राम ने कहा, मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मेरे भाई हैं, बहुत योग्य हैं, वो भी दिखने में बहुत सुंदर है, वो उनको पा उनके पास जाना। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा, मैं तो राम का दास हूँ, यदि तुम्हारा विवाह मेरे से होगा तो तुम्हें सीता देवी की दासी बन के रहना होगा, इसे तुम राम से ही पूछो। तो राम के पास गई, राम ने कुछ कह दिया, लक्ष्मण के पास भेज दिया। ऐसे अनेक बार आ जाके शूर्पणखा ने सोचा कि मेरी सारी ये समस्या का कारण ये एक महिला है सीता, अगर सीता को ही मैं खत्म कर दूं तो फिर मैं श्री राम को पा सकती हूँ। तो जब वह सीता के प्रति ऐसे आक्रमणात्मक भाव से आगे बढ़ी तो लक्ष्मण को नाक कान आदि काटने पड़े। राम ने इशारा किया कि अभी इसको ठीक कर दो। तो शूर्पणखा गई वापस खर के पास, खर और दूषण जो उसके चचेरे भाई थे, जो वहाँ जनस्थान में पंचवटी में दंडकारण्य में रह रहे थे, और उनको बड़ा गुस्सा आया। 14,000 राक्षसों के साथ वो आए, राम ने अकेले 2 घंटे में उन सब का वध कर दिया। शूर्पणखा और भी रोते रोते रावण के पास गई, रावण को बहुत ललकारा कि तुम किस तरह के भाई हो, किस तरह के राजा हो, किस तरह के पुरुष हो, अपने बहन का, एक स्त्री का ऐसे अपमान तुम कैसे शांति से सहन कर रहे हो। रावण ने बोला, भाई क्या बात, क्या है, कुछ समझाओ तो हमको, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम, किसने ये हालत तुम्हारी बना दी, क्या हुआ। तब शूर्पणखा ने सारी बातें बताई, और शूर्पणखा ने अपने अहंकार के कारण, क्योंकि शूर्पणखा की इच्छाएं खत्म हो गई थी, तो उसने रावण को भड़काया सीता के बारे में। ये राम है, मैं राम के पास गई, लेकिन राम और लक्ष्मण ने ऐसे मेरे साथ किया, और फिर जो राक्षस थे, हमारे भाई थे खरदूषण, उनका भी वध कर दिया, तो इनका बदला लेना चाहिए। और उनकी पत्नी जो है सीता राम की, वो बहुत सुंदर है, वो केवल आपके लिए होनी चाहिए। रावण तो बड़ा कामुक व्यक्ति था, तो जैसे ही किसी सुंदर स्त्री की बात सुनी तो रावण ने सोचा कि ये स्त्री मेरी होनी चाहिए। तो यक्षुरपणखा ने इस प्रकार से भड़काया रावण को, नहीं तो रावण केवल राम के साथ युद्ध करने चले जाता, सीता देवी के पास बारे में इतना सोचता नहीं, लेकिन शूर्पणखा के कारण ही ये सारी समस्या हो गई। तो इसमें जगह जगह हम देखते हैं स्त्री का ही पात्र था, तो इसलिए एक श्री संप्रदाय के आचार्य बताते हैं कि रामायण है, हमें स्त्री कथा सुननी चाहिए, मतलब रामायण, और दूसरा है कि हमें द्यूत कथा सुननी चाहिए, मतलब रामा महाभारत, द्यूत मतलब युवा, सब युवा के कारण सब समस्या हुई ना, तो ये महाभारत और रामायण है। लेकिन रामायण में मूल रूप से स्त्रियों के कारण सारी समस्याएं हुई, बल्कि भागवत में ये श्लोक आता है ना, मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो, कि भगवान श्री राम प्रकट हुए न केवल राक्षस रावण की हत्या करने के लिए, परंतु हम सबको उपदेश देने के लिए, हम जो कि इस मर्त्यलोक के निवासी हैं, हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वो शिक्षा क्या है कि कोई व्यक्ति जब स्त्री से ज्यादा आसक्त हो जाता है तो उसके जीवन में कितना दुख आता है, ये सिखाने के लिए श्री राम प्रकट हुए, ऐसे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में श्लोक है। हालांकि श्री राम और सीता देवी का संबंध कोई भौतिक संबंध नहीं है, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि ये भौतिक संबंध है, जैसे एक पत्नी के जाने पर पति कैसे दुखी हो जाता है, तो वैसे ही श्री राम भी लीला कर रहे थे, जब सीता देवी का अपहरण हुआ तो बहुत शोक कर रहे थे, मानो कि एक साधारण व्यक्ति है। फिर लक्ष्मण को उनको याद दिलाना पड़ा कि आप भगवान हैं, याद रखिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो अपने लीला में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, ये है भगवान की लीला। तो सीता देवी के प्रति राम की जो आसक्ति है, उसको एक संदेश के रूप में पेश करके इस श्लोक में बताया जाता है कि ये संसार की आसक्ति, विशेष करके पुरुष और स्त्री की आसक्ति से कितना कष्ट उत्पन्न होता है व्यक्ति। तो खैर, सीता देवी की भूमिका रामायण में इतनी महत्वपूर्ण है, सीतायन रामायण में सीतायन और एक नाम वाल्मीकि मुनि देते हैं इसको, पौलस्त्य वध, क्योंकि रावण पौलस्त्य है, पुलस्त्य ऋषि के पोते हैं वो, के पौत्र हैं, तो पौलस्त्य वध। तो सीता देवी का जन्म भी बड़ा विचित्र था, अद्भुत था, साधारण नहीं था। राजा जनक मिथिला में जब एक यज्ञ संपन्न करने के लिए हल चला रहे थे, तो हल जब चलाया जाता है मिट्टी में, तो जो मिट्टी में जो एक जगह बन जाती है हल के कारण, उसे सीता कहते हैं। तो अचानक उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा उसमें, जो भूमि से उत्पन्न हुई थी। वो बच्ची बहुत सुंदर थी, स्वर्ण के समान चमक रही थी कमल पुष्प में। तो राजा जनक तो बहुत समय से एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, संतान हुए नहीं थे, तो तो आज जब ये बच्ची को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान का देन है, और उस बच्ची का नाम सीता रखा, क्योंकि वो हल के चलाने से ज़मीन में जो जगह होती है उसको सीता कहते हैं। उसके बाद ये नाम सीता रखा गया। और थोड़े समय बाद जनक महाराज के पत्नी को एक बच्ची भी हुई जिसका नाम रखा गया, कोई जानते हैं? सीता देवी की बहन का नाम उर्मिला, उर्मिला नाम था। तो इधर सीता देवी का जन्म हुआ, राजा जनक और सारे मिथिला की प्रजा बहुत खुश थे सीता देवी के चरित्र को देखकर। न केवल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन अपने चरित्र में, व्यवहार में बहुत सौम्य, बहुत विनीत, और हर दृष्टि से सारे मिथिला के वासियों का हृदय उन्होंने जीत लिया। और एक बार ऐसे हुआ कि परशुराम, ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, वो आए। और इस समय तक सीता देवी की आयु थोड़ी बहुत बढ़ भी गई थी। तो परशुराम जब राजा जनक से मिलने के लिए गए थे तो अपना जो धनुष है उन्होंने दरवाजे पे छोड़ा था, महल के दरवाजे पर, उसको वहाँ छोड़ के वो अंदर गए थे। और जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धनुष नहीं है, तो इधर उधर देखे कि मेरा धनुष कौन उठा के लेके गया। तो देखा कि बालिका सीता वो धनुष लेके खेल रही है। सोचे, अरे इतना भारी धनुष ये केवल मैं उठा सकता हूँ, और ये बच्ची इस धनुष को आराम से उठा के ऐसे खेल रही है। तो परशुराम ने राजा जनक को बुलाया और कहा कि ये बच्ची साधारण नहीं है, इसका विवाह करना है, समय हो गया विवाह कराने के लिए, लेकिन ऐसे एक योग्य वर से करना चाहिए जो वाकई बहुत वीर हो, बहुत शूरवीर हो, अति योग्य हो इस बालिका के लिए। तो फिर जनक महाराज सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, ऐसे किस तरह से ऐसे योग्यता, ऐसे योग्य व्यक्ति को पाया जाए, और क्या परीक्षा होनी चाहिए योग्यता का नाप तोल करने के लिए। तो सीता देवी ने तो परशुराम जी का धनुष उठाया ही था। तो फिर जनक महाराज ने सोचा, मेरे पास शिव जी ने दिया हुआ धनुष है जो मेरे पूर्वजों को प्राप्त हुआ था, तो उस धनुष को जो कि बहुत भारी है, कोई साधारण व्यक्ति उठा नहीं सकता, उसको मैं एक शर्त बनाऊंगा कि जो भी राजकुमार आए मेरी पुत्री के हाथ के लिए विवाह में, उसे ये धनुष उठाना होगा और उसको उसकी डोरी बांधनी होगी, और उसको बांध के अपने हाथों से करना होगा, जो ऐसे करेगा वो मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार कर सकता है। तो निमंत्रण भेजे गए, सब जगह घोषणा की गई, सब जगह खबर फैली। सीता देवी के सौंदर्य की खबर तो सब जगह पहले से ही फैली हुई थी, तो सारे जो क्षत्रिय राजकुमार थे वो इस तरुणी जो बहुत सुंदर थी उसके हाथ के लिए जगह जगह से आए। लेकिन जैसे उन्होंने ये बड़ा धनुष देखा, उसको केवल दूर से प्रणाम करके वहाँ से निकल गए कि इसको उठाना हमारे बस की बात नहीं है, ये भी शिव जी का धनुष है, तो चले गए। और फिर अंत में स्वयंवर के समय भी अनेक आए, उन्होंने सोचा चलो आए हैं तो प्रयास तो करना चाहिए, आके धनुष को अपनी पूरी ताकत लगा के उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिल नहीं पाए। केवल धनुष को चूर होने के बजाय उनका अहंकार चूर होकर उनको जाना पड़ा वहां से। और अनेक लोग आए, साथ साथ में विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को भी यहाँ लेकर आए थे। हम कल सुन रहे थे सनत कुमार प्रभु से विश्वामित्र मुनि की कथा कि कैसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं त्रेता युग में आऊँगा राम के रूप में और आपका शिष्य बनूंगा, आपसे मैं सीखूंगा। तो भगवान की लीला देखिए, विश्वामित्र मुनि कितने भाग्यशाली थे कि भगवान उनके शिष्य बने और उनके कारण ही सीता और राम फिर से एकत्र हो गए, वैसे जैसे राधा रानी और कृष्ण हमेशा गोलोक वृंदावन में साथ में रहते हैं। ये नित्य जोड़ी है, कभी अलग नहीं होते हैं। परंतु जब इस भौतिक सृष्टि में पृथ्वी लोक में आके लीला करते हैं, वो यहाँ जब प्रकट होते हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो उनका जन्म अलग-अलग से हुआ है, वे बड़े हुए हैं और कोई निमित्त से, वैसे कोई स्वयंवर होता है या कोई अन्य पद्धति से उनका विवाह होता है या वो मिलते हैं पहली बार। ये तो केवल भौम लीला है, परंतु अपने धाम में तो वो कभी अलग नहीं होते हैं। ये सनातन नित्य जोड़ी है दोनों की, युगल किशोर किशोरी। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण तिरुपति आदि की लीला में हम देखते हैं, लक्ष्मी कहीं तपस्या करने चले जाती है, वेंकटेश्वर भी कहीं चले जाते हैं, ये सब भौम लीला है। वैकुंठ में लक्ष्मी और नारायण कभी अलग नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से भगवान के धाम में अयोध्या है, जो यहाँ प्रकट कराते हैं भगवान, वहाँ सीता और राम कभी भी अलग नहीं होते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जब लीला करते हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि दोनों का जन्म अलग-अलग जगह हुआ है, और फिर विश्वामित्र मुनि एक निमित्त बनते हैं, उनको असुरों का वध करने के निमित्त में वो उनको अपने राज्य से ले जाते हैं, बड़े भारी हृदय से दशरथ महाराज उनको अनुमति देते हैं जाने के लिए, फिर सुबाहु ताटका इनका वध करते हैं, मारीच को एक तीर मार के 800 योजन दूर भेज देते हैं, और आगे चलते चलते विश्वामित्र मुनि उनको कई कहानियां बताते हैं, अनेक पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, उनको तरह तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं और वो शक्ति भी प्रदान करते हैं। और फिर जब काफी अंदर पहुंच चुके होते हैं, फिर वो कहते हैं चलो वहाँ जनक महाराज के राज्य में हमने खबर सुनी है स्वयंवर हो रहा है। तो विश्वामित्र मुनि को भगवान ने यंत्र बनाया, एक निमित्त बनाया उनके विवाह के लिए। तो देखिए विश्वामित्र मुनि ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका की, युगल जोड़ी को फिर से यहाँ एक साथ में वो ले आए, वो कारण थे। तो जब वो आए जनक महाराज के दरबार में, तो जनक महाराज ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया और बताया कि यहाँ स्वयंवर की तैयारियां हैं। तो जब श्री राम वहां पर आए, तो जनक महाराज ने उनको देखा, बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम आसानी से चले उस धनुष के सामने, उस धनुष को उन्होंने प्रणाम किया और फिर उसे आसानी से उठाया, धनुष की डोरी बांध दी और ऐसे खींचा उस धनुष को कि सारा धनुष ही टूट गया, और ऐसे भयंकर आवाज आ गई कि मानो ब्रह्मांड ही फूट रहा है। वो जितने भी लोग उपस्थित थे, वो सारे के सारे केवल जनक महाराज, राम, विश्वामित्र मुनि, लक्ष्मण के अलावा जितने भी थे, सब गिर पड़े जमीन पर वो आवाज की वजह से। वाल्मीकि रामायण में ऐसे बताया जाता है कि उस एक धनुष को 5,000 लोग चाहिए थे उठाने के लिए, और ये प्रभु रामचंद्र ने अकेले आराम से उठाया और उसको तोड़ भी दिया। ये शिव जी का धनुष इतना भारी था। और फिर सीता देवी ने बड़े आनंद से इस स्वयंवर में श्री राम को चुना और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उधर लक्ष्मण का विवाह भी उर्मिला से हो गया, लक्ष्मण की पत्नी है ये। तो इस प्रकार से सीता देवी और श्री राम पति पत्नी बन गए। एक चुटकुला है जो हम कई बार सुनाते हैं इस संदर्भ में, ये एक टीका है हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर, शायद ये चुटकुला आप सुने भी होंगे। कि एक बार एक जो शिक्षा मंत्री थे, वो सब जगह स्कूलों में जा रहे थे, एक स्कूल में गए तो स्कूल में एक अनुष्ठान मनाया गया, सारे बच्चे वहाँ थे और मंच के ऊपर मंत्री थे और स्कूल के प्राध्यापक थे, अन्य अध्यापकगण भी थे और सामने बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो बातों बातों में फिर मंत्री ने पूछा, अच्छा आप सब ने रामायण तो पढ़ा है ना? तो सब ने बोला हाँ 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 हमने रामायण पढ़ा है। तो मंत्री ने प्रश्न पूछा कि बच्चों अभी बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो सब शांत थे। फिर एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करके जोर से बोलने लगा, सर मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। तो जब ऐसे बोले तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो एक अध्यापक बैठे थे उधर मंच पे, तो वो बोलने लगे मंत्री से, सर मैं जानता हूँ इसी ने तोड़ा होगा इसलिए। तो फिर वो मंत्री तो और भी आश्चर्यचकित हो गए, अभी प्राध्यापक की ओर देखा कि प्राध्यापक अभी क्या उत्तर देंगे। तो प्राध्यापक बोलने लगे, सर कोई बात नहीं, क्या है हम स्कूल के बजट में एडजस्ट कर लेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा भी होगा, जिसने भी थोड़ा होगा, है ना। तो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। आजकल कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, बच्चे बड़े होते हैं उनको ये सब कुछ ज्ञान मिलता नहीं है, शास्त्रों की बात सुनते नहीं हैं, केवल आधुनिक ज्ञान उनके मन में भर दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय, ये आध्यात्मिक कत्ल खाने हैं, जिसमें बच्चों की आध्यात्मिक जो वृत्ति है वो नष्ट की जाती है और एक पूरी तरह से भौतिक संस्कृति की स्थापना करती है। तो खैर विवाह तो हो गया, बड़े धूमधाम से वापस जा रहे थे सीता देवी को लेकर, दशरथ महाराज भी आए थे वहाँ विवाह के लिए। तो वापस जाते समय परशुराम जी की भेंट हुई। परशुराम जी ने सुना था कि राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो परशुराम शक्तावेश अवतार हैं, लेकिन उनके भी स्वामी सामने खड़े थे अभी श्री राम के रूप में। परशुराम तो जीवात्मा है, उनको दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की थी भगवान ने, जब क्षत्रिय दुष्ट हो गए थे तो विशेष शक्ति परशुराम को मिली थी। उनका भी नाम राम है, परशु हाथ में लेकर घूमने वाले राम, वो है परशुराम। परशु भी एक शस्त्र होता है जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था। तो परशुराम आए, भयानक दिख रहे थे और उन्होंने बोला कि यदि इतनी ही शक्ति है तो विष्णु का जो धनुष मेरे पास है उसको उठाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। परशुराम अपने ही प्रभु को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। परशुराम का इस भयंकर स्वरूप को देखकर दशरथ महाराज ने आश्रय ले लिया परशुराम का, कि कृपया आप कुछ मत कीजिए, हमारे बच्चे अभी तरुण हैं, अभी अभी शादी होके आए हैं। लेकिन परशुराम ने एक नहीं मानी और सीधे जाकर राम को चैलेंज कर दिया और कह दिया कि देखता हूँ शक्ति तुम्हारे अंदर कितनी है। तो श्री राम ने आसानी से वो विष्णु का धनुष उनसे छीन लिया। लेने की बात तो क्या, आसानी से झट करके छीन के उसको ऊपर करके डोरी भी बांध दी, सब कुछ कर लिया। और फिर उन्होंने उसको तीर ऐसे डोरी बांध के और तीर भी लगाया और बोल रहे थे, अब बताइए ये तीर मैंने खींच कर रखा है, अभी कहाँ छोड़ूं, कहाँ तो छोड़ना चाहिए इसको, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तो बताइए कहाँ छोड़ो इसको तीर को। फिर परशुराम ने क्या उत्तर दिया?
जो उनका तपस्या का फल है,
तो मेरे सारे तपस्या का फल पुण्य उसमें से तीर में से निकाल लीजिए। फिर राम ने को छोड़ के परशुराम की तपस्या का फल नष्ट, फिर परशुराम तपस्या करने वापस महेंद्र पर्वत के ऊपर गए। तो खैर सीता देवी को लेकर श्री राम वापस आए, बड़े धूमधाम से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और ऐसे अनेक साल बीत गए। और जब करीब करीब 25 या 36 27 साल के थे श्री राम, उस समय उनको वनवास में जाना था। सीता देवी की आयु उस समय भी बहुत कम थी, मतलब तरुणी थी अभी तक, और ऐसे तरुण अवस्था में वनवास में गई और वहाँ जाके अपहरण हुआ। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक कथा है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत में गए थे तीर्थ यात्रा में, तो एक जगह एक ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण किया दोपहर के प्रसाद के लिए। तो वो गए तो सही, ठीक समय पे पहुंचे उनके घर में और देखा कि ये ब्राह्मण जो है अभी तक कुछ प्रसाद की तैयारी तो शुरू भी नहीं की उन्होंने, केवल बैठ के यहाँ रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपने मुझे भोजन के लिए बुलाया, मध्याह्न तो हो गया, समय तो हो गया दोपहर का, लेकिन आपने भोजन बनाना शुरू भी नहीं किया है और आप बैठ के यहाँ कुछ दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? तो बोलने लगे, वो ब्राह्मण जो थे बड़े शुद्ध राम के भक्त थे और बोले कि आज मैं रामायण पढ़ रहा था, मेरा पाठ चल रहा था और मैंने पढ़ा कि रावण जो है सीता देवी का अपहरण करके लेके गया और मुझे ये पढ़ के इतना दुख हुआ कि मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा, मेरा मन बहुत दुखी हो गया है ये सुन के कि रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया है। तो उनका भाव समझ लिया महाप्रभु ने, उनको सांत्वना दी किसी न किसी तरह से। फिर भोजन तो पकाया ब्राह्मण ने, फिर महाप्रभु को खिलाया, फिर महाप्रभु आगे चलते गए। फिर आगे उनको एक जगह कूर्म पुराण के कोई श्लोक मिले, कोई पन्नों के ऊपर ऐसे श्लोक थे जिनमें ये बताया गया था कि सीता देवी का अपहरण वास्तव में रावण ने नहीं किया, जिस सीता देवी का अपहरण हुआ वो माया सीता थी, असली सीता का स्पर्श कभी नहीं कर सकता है कोई दुष्ट व्यक्ति, असली सीता ये तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो केवल नारायण की संपत्ति है और केवल नारायण का ही अधिकार होता है या वो सामर्थ्य होता है कि वो लक्ष्मी का स्पर्श करे, जो अन्य होते हैं तो दुष्टों की राक्षसों की बात तो दूर है, वो कोई भी राधा रानी हो सीता देवी हो लक्ष्मी देवी हो उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो फिर रावण ने कैसे स्पर्श किया, इसलिए रावण ने नहीं किया ये निष्कर्ष निकलता है, जो स्पर्श किया वो माया सीता है। तो ये माया सीता कौन है, तो इसके बारे में भी वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि रावण जो है उसका नाम पहले दशग्रीव था, 10 सिरों का आदमी था वो, और इतनी शक्ति पा ली थी ब्रह्मा जी की कृपा से तपस्या करने के बाद कि जहाँ भी रावण जाता तो वो सबको हैरान करता, सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गया था ये रावण, जगह जगह जाके बलात्कार करता स्त्रियों का, अप्सराओं का, देवलोक से लोगों को अपने पद से मुक्त कर देता, देवताओं को उसने हटा दिया पद से, अनेक ऋषियों को भी हैरान करता था, तो सारे लोग बड़े परेशान थे। तो रावण इतना कामुक व्यक्ति था कि जब भी वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखता था तो वो जाके कुछ न कुछ ऐसे गलत काम कर देता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि रावण वन से जा रहा था, उसने बहुत सुंदर युवती को देखा, तो उसने जाके प्रस्ताव रखा उस युवती को कि तुम मेरे पास चले आओ। अब वो युवती तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी, साध्वी थी वो, और साधारण ऋषि के वस्त्र में वो जंगल में अकेली रह रही थी। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं इस फलाना ऋषि की पुत्री हूँ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैंने ठान लिया है कि मैं केवल नारायण को ही अपना पति बनाऊंगी, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। तो उस समय रावण को बड़ा अहंकार से गुस्सा आया, उसने उस लड़की के उस युवती के हाथ को पकड़ लिया कि चलो मेरे साथ। तो जैसे ही पकड़ा, पकड़ने गए वो, तो उन्हें हाथ नहीं पकड़ा, उनके बाल पकड़े, बाल पकड़े और चलो मेरे साथ खींचने के लिए। लेकिन अपने तपोबल से इस युवती ने अपने हाथों को तलवार बना दिया और बाल ही काट दिए, तो रावण के हाथ में केवल बाल रह गया। और फिर अपने योग बल से तुरंत एक अग्नि स्थापित करके वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने शरीर को भस्म कर दिया, और ये श्राप देते देते अपने प्राण त्याग दिए कि क्योंकि तुमने जबरदस्ती ऐसे मेरे ऊपर किया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि स्त्री के कारण ही तुम्हारी तुम्हारा वध होने वाला है, तुम्हारे सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। और यही वेदवती जो है ये आगे चल के माया सीता बनी, ऐसे आचार्य बताते हैं। तो ये सीता देवी प्रकट हुई। फिर जब रावण अपहरण कर गए सीता देवी को, माया सीता को, उस समय जब लंका से युद्ध जीत कर श्री राम वापस आए, उन्होंने कहा सीता देवी से कि मैं केवल मेरा कर्तव्य मेरे प्रजा आदि के प्रति पूरा कर दिया, मैंने इसलिए तुम्हें छुड़वाया नहीं कि मैं तुमसे बहुत आसक्त हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने किया। लेकिन अब तुम एक साल किसी दूसरे के घर में रही हो तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और ये कैसे मान सकता हूँ कि तुम शुद्ध हो, कि तुम पवित्र हो। तो सीता देवी ने कहा कि मैं अग्नि से एक साक्षी लूंगी कि मैं पवित्र हूँ। फिर वो प्रसिद्ध अग्नि परीक्षा हुई और उस समय स्वयं अग्निदेव आए। अग्निदेव ने आके सीता देवी को लौटा दिया कि नहीं, ये पवित्र है, ये साक्षी है, मैं साक्षी हूँ। तो उस समय अग्नि में फिर से माया सीता चली गई और असली सीता वापस बाहर आई। तो जो सीता श्री राम के साथ वापस चली गई अयोध्या, वो असली सीता थी। लेकिन जो सीता रावण के पास थी वो माया सीता थी, वेदवती सीता थी। इसलिए रावण ने वास्तव में असली सीता का स्पर्श नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा और उन्होंने उस ब्राह्मण के बारे में सोचा, तो तुरंत उसकी लिपियां बना दी। और जब लौट रहे थे, फिर से उसी स्थान से लौट के गए, उस ब्राह्मण से मिले और उनको ये बताया। तो ये जब सुना उस ब्राह्मण ने तो उनको बहुत सांत्वना मिली, बहुत संतुष्ट हुए कि ठीक है, हाँ अभी मेरा हृदय शांत हो गया कि रावण ने सीता देवी का स्पर्श नहीं किया, केवल माया सीता का स्पर्श किया। तो खैर, तो ऐसे सीता देवी की अग्नि परीक्षा हो गई। फिर राम ने कहा, हाँ मैं तो जानता हूँ सीता देवी पूरी तरह से पवित्र है, परंतु मैं राजा हूँ, मुझे उदाहरण रखना चाहिए सबके सामने। तो अब जब ये सबके सामने एक प्रमाण हो गया, सबूत हो गया, तो कोई कल ये नहीं कह सकता है कि मेरी पत्नी शुद्ध नहीं है, अभी इसका प्रमाण आ गया सामने। तो इसलिए फिर वापस ले गए, राजगद्दी पर बैठे श्री राम, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और उस समय सीता देवी गर्भवती भी थी। लेकिन जब श्री राम एक आदर्श वैदिक राजा के समान कभी कभी अपने राज्य में घूमते फिरते थे ये देखने के लिए कि प्रजा कैसी है और क्या खबर है, धर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है कि नहीं, प्रजा संतुष्ट है कि नहीं, उस समय उन्होंने एक धोबी को बात करते हुए देखा जिसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के घर में गई हुई थी और उसने उस अपने पत्नी को वापस स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं राम की तरह नहीं हूँ जिसने एक स्त्री को स्वीकार किया जो कि दूसरे पुरुष के घर में जाकर आई है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो राम ने इस बात को सुना, तो राम ने सोचा कि ऐसे एक भी व्यक्ति मेरे राज में बात करे ये अच्छा नहीं है। तो किसी को भी राजा के ऊपर संशय भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलनी भी नहीं चाहिए। इसलिए दोबारा श्री राम ने ठीक समझा कि सीता देवी को वनवास भेजना। देखिए वो कितने अपने प्रजा के प्रति कर्तव्य के लिए निष्ठावान थे, श्रद्धालु थे, तो इतना महत्व दिया उन्होंने इस बात को। आजकल नेता है उनके बारे में लोग क्या नहीं बोलते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है, जब तक हम हैं तब जितना हो सके, जब तक गंगा बहती है पानी इसका ले लो, बहते गंगा में हाथ धो लेना, ऐसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, कहते हैं मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, जब ठीक है, जब मौका है अच्छा उसका ये कर लो, तो बहते हुए गंगा में पानी में हाथ धो लो। तो अभी नेता कैसे होते हैं, जब तक पद में हैं जितना पैसा है वो बना लो, जितना भोग करना है कर लो, बाद में चुनाव में होगा नहीं क्या पता नहीं, इसलिए अभी इस चुनाव में आए हैं तो खूब बना लो पैसे। तो जनता क्या बोलती है क्या कुछ उनको परवाह नहीं है इसके बारे में। अभी राम कथा में जब हुई, हम ये घटना बता रहे थे, सच्ची घटना है कि भारत में एक मंत्री थे किसी दूसरे राज्य में, 10-15 साल पहले की बात है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको निकाला गया, अदालत आदि में बहुत कुछ सारी कार्यवाही हुई, और एक पत्रकार ने एक बार उनको पूछा कि ऐसे बताया जा रहा है कि आप आपके रिश्तेदारों के प्रति तरफदारी कर रहे हैं, तो क्या ये सच है। तो उस मंत्री ने उत्तर क्या दिया कि मैं मेरे रिश्तेदारों की तरफदारी नहीं करूँगा तो क्या आपके रिश्तेदारों के लिए करूँगा, ये उनका उत्तर था। भले बाद में लाख जोग उनकी कितनी भी निंदा करें, कुछ क्या भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन राम ऐसे नहीं थे, नेता नहीं थे। उन्होंने देखा कि मेरे प्रजा के मन में मेरे प्रति, राजा के प्रति ऐसे संशय भी नहीं होना चाहिए, हालांकि मैंने अग्नि परीक्षा कर दी फिर भी ये व्यक्ति ऐसे सोच रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मेरा कर्तव्य जो है प्रजा के प्रति सर्वोच्च है। तो राजा के पद को एक ऐसे विश्वासप्रद पद होना चाहिए कि लोग बिल्कुल संशय नहीं करें उनके प्रति। तो राजा का व्यवहार, राजा के बारे में सब कुछ आदर्श होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि सीता देवी को फिर से जाके वन में छोड़ के आओ। तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, कुछ कर नहीं सकते, बड़े भाई हैं। हालांकि अंतर केवल 2 दिन का था, लेकिन फिर भी बड़े भाई और कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने व्रत लिया, अगली बार जब अवतार लेंगे तो मैं बड़ा भाई बनकर आऊँगा। इसलिए वो द्वापर युग में बलराम बन के आए और राम कृष्ण, क्योंकि छोटे भाई बन के सुनना पड़ता है बड़े भाई का बात। तो फिर वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आए सीता देवी को, और सीता देवी ने वहाँ लव और कुश को जन्म दिया। और जब लव कुश करीब करीब 14-15 साल के थे तो उन्होंने पूरी रामायण वाल्मीकि मुनि से सीख ली और जगह जगह जाके वो रामायण की कथा करते थे। अयोध्या में भी आए, स्वयं श्री राम ने कथा सुनी, और कथा चलते 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 जब सीता के वनवास में दोबारा भेजने जाने के बात आई तो उस समय राम को पता चला कि ये मेरे ही बच्चे हैं। और उन्होंने फिर वाल्मीकि जी से कहा कि मैं पुनः सीता देवी को यहाँ ले आना चाहता हूँ, मैं बहुत अभी दुखी हूँ। तो वाल्मीकि मुनि बड़े प्रसन्नता से सीता देवी को लेकर आए। श्री राम ने कहा कि सीता देवी की पवित्रता का प्रमाण मैं फिर से चाहता हूँ। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि दोबारा ऐसे मत करिए, मैं स्वयं आश्वासन देता हूँ सीता देवी की पवित्रता के बारे में। तो उस समय सीता देवी ने कहा कि यदि मैं पवित्र हूँ तो मेरी माता जो भूमि देवी है, आपको याद होगा जन्म तो भूमि से हुआ था ना, तो मेरी माता भूमि देवी मेरी साक्षी है, और यदि ऐसा है तो वो खुल जाए और मुझे साथ में ले लें, क्योंकि मैं ऐसे फिर से नहीं साबित कर सकती, यही मेरा प्रमाण होगा। तो पृथ्वी खुल गई, पृथ्वी माता एक सिंहासन पर बैठ के प्रकट हुई और उन्होंने सीता देवी को अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन फिर से नीचे पृथ्वी में चले गया और पृथ्वी फिर से बंद हो गया, मानो कि कभी खुला ही नहीं था। और फिर वो चली गई सीता देवी, तो फिर श्री राम बहुत दुखी हो गए, लेकिन दोबारा सीता देवी की पवित्रता का प्रमाण सबके सामने रखा गया था। तो श्री राम जो है वह सीता देवी के प्रति ऐसे कठोर कदम उठाने में बाध्य हो गए, क्योंकि वो अपने राजा के कर्तव्य के प्रति इतने निष्ठावान थे, लेकिन अपने धार्मिक कार्यों को करते समय वो सीता देवी की सोने की पुतली, सोने की मूर्ति साथ में रख के वो यज्ञ आदि करते थे। तो सीता देवी उनके सोने के मूर्ति के रूप में उनके साथ में थी, परंतु प्रत्यक्ष रूप में वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहे। तो खैर, ऐसे अनेक वर्षों तक श्री राम ने राज्य किया, लेकिन अपनी एक पत्नी व्रत से के प्रति सुदृढ़ रहे, दोबारा विवाह नहीं किया। हालांकि क्षत्रिय के लिए तो अनेक पत्नियों को स्वीकार करना ये एक प्रथा थी उस समय। दशरथ महाराज के पास भी अनेक, ऐसे बताया जाता है कि शायद 360 या ऐसे कुछ पत्नियां थीं, जिनमें से चार प्रमुख थीं। उनके पिता ने भी इतने सारे पत्नियों को स्वीकार किया था, लेकिन श्री राम ने व्रत लिया था और जब पत्नी चली गई तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो श्री राम ने राज्य किया 11,000 वर्ष, फिर स्वधाम अयोध्या चले गए और उस समय सारे अयोध्या के निवासी भी उनके साथ में भगवान के धाम में लौट के चले गए। और फिर से वैकुंठ जगत के अयोध्या में श्री राम और सीता का मिलन पुनः हुआ। तो ये है सीता चरित्र। जैसे श्री राम आदर्श एक राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उसी प्रकार से सीता देवी भी एक आदर्श नारी है, आदर्श पत्नी है। तो सीता राम की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज सीता देवी का जन्म दिवस माना जाता है, आविर्भाव दिवस। श्रीमती सीता देवी की जय। हरे कृष्णा। संक्षेप में सीता देवी के चरित्र का वर्णन किया है। कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी?
हरे कृष्ण महामंत्र में,
हाँ
राम बोलते हैं, ये कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं?
प्रभुपाद जी कहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र में जो राम है, ये वैसे तो हमारे भाव के ऊपर निर्भर होता है। तीन राम हैं शास्त्रों में, एक हैं अयोध्या के राम, दूसरे हैं बलराम और तीसरे हैं परशुराम। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम हरे राम कहते हैं तो हमारे भाव के ऊपर है, तो भले हम सीता राम को भी कह रहे हों तो कोई उसमें दोष नहीं है। हरे मतलब भगवान की शक्ति, तो हरे राम मतलब यदि हमारे मन में राम मतलब अयोध्या राम है तो हरे सीता देवी को संबोधित करता है। यदि हमारा भाव ऐसे है तो फिर हरे राम का मतलब है सीता राम। साथ साथ में गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने यह भी एक चौथा अर्थ दिया है। वो कहते हैं कि राम का मतलब है कृष्ण, राम मतलब जो रमण करते हैं आध्यात्मिक आनंद में, और जिनका जिनके ऊपर ध्यान करके योगी जन भी दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। कौन सा श्लोक है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। फिर क्या? इति ब्रह्म इति राम पदे नासो परम ब्रह्म परम ब्रह्माभिधीयते, है ना। योगी लोग जो राम में रमण करते हैं और दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, तो इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। तो ऐसे राम शब्द जो है ये परम ब्रह्म को संबोधित करता है। तो श्री कृष्ण परम आनंद प्रदान करने वाले हैं, परम आनंद का अनुभव करने वाले भी है। इसलिए राम मतलब राधिका रमण, राधिका राधा रानी में रमण करने वाले, इसलिए चौथा अर्थ है। तो राम भी कृष्ण है, तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं वो तो राधा कृष्ण है ही, और हरे राम भी कहते हैं तब भी वो राधा कृष्ण है। ऐसे गौड़ीय वैष्णव दृष्टिकोण से हम समझते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि कोई सीता राम भी समझे तो इसमें कोई दोष नहीं है, वो हर एक भक्त के भाव के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कौन हाथ ऊपर कर रहे पीछे। हाँ
पहले हम कई बार सुन चुके हैं कि ये रामायण होने से पहले जो रामायण वाल्मीकि ने लिखा था ये सही है क्या? और दूसरा प्रश्न है कि राधा रानी, सीता देवी और लक्ष्मी में क्या अंतर है और अंतर है कि
रामायण होने के पहले रामायण क्या लिखी गई थी, मतलब ये प्रश्न है। इसका उत्तर हाँ और या और नहीं, दोनों है, क्योंकि बीच में लिखी गई थी। बीच में कब? जब श्री राम लंका से युद्ध जीत कर आए और फिर से राजगद्दी पर बैठे, उसकी थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी ने रचना कर ली रामायण की। तो इस समय करीब करीब श्री राम 49 या 40 साल के थे, और फिर आगे उन्होंने 11,000 साल और राज्य किया। तो इसका मतलब है कि 40 साल की उम्र में, जब श्री राम 40 के थे उस समय रामायण की रचना हुई, तो 40 साल की जो कथा हुई रामायण की वो तो वाल्मीकि मुनि ने घटनाओं के बाद में लिखा। ब्रह्मा जी की कृपा से उनको सब दिखाई पड़ा, जैसे टेलीविजन में या सिनेमा में आदमी देखता है या प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देखता है, वैसे उनको दिखाई पड़ा। लेकिन जो भविष्य में घटनाएं होने वाली थीं वो 11,000 साल पहले की घटनाएं उन्होंने समझ ली। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि अब वाल्मीकि रामायण में देखा जाता है कि जब नारद जी आके संक्षिप्त रामायण सुनाते हैं वाल्मीकि मुनि को, वो वाल्मीकि मुनि के गुरु थे ना, तो जब तक वो पुनः राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते लंका युद्ध के बाद, तब तक वो भूत क्रिया का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस, और फिर इस राज सिंहासन को स्वीकार करने के बाद की घटनाओं को भविष्य क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस। तो इसका क्या मतलब है? तो रचना की है बीच में इस समय। तो ये पहला प्रश्न है। तो करीब करीब, तो जब कोई लोग कहते हैं कि रामायण के होने के 10,000 साल पहले लिखा, इस तरह से लिखा, वो 40 साल की उम्र में लिखा श्री राम के, तो और 11,000 साल आगे की कथा थी ना, वो भी उनको उन्होंने देख ली, और साथ साथ राम के आविर्भाव होने के बाद भी उन्होंने लिखा। हाँ, ठीक है। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि श्रीमती राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी में अंतर क्या है या संबंध क्या है, इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, चाहे वो राम हो, नरसिंह हो, वामन हो इत्यादि, और भगवान के साथ जो शक्तिमान है शक्ति भी रहती है, तो आदि शक्तिमान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो जैसे श्री कृष्ण परम शक्तिमान के अवतार या उनके विस्तार होते हैं, अन्य जैसे विष्णु नारायण इत्यादि, श्रीमती राधा रानी भी अपना विस्तार करती हैं। तीन प्रकार के विस्तार हैं, ऐसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। एक है वृंदावन की गोपियां, जिनमें से श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। दूसरे हैं द्वारका की महिषियां और तीसरे हैं वैकुंठ की लक्ष्मियां। ये सब श्रीमती राधा रानी से के विस्तार हैं। उसी तरह से सीता देवी भी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं। जैसे श्री कृष्ण से श्री राम उत्पन्न होते हैं, कला है उनके, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के विस्तार के विस्तार ऐसे श्रीमती सीता देवी है। तो जितने भी शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्तियां हैं जो भगवान के साथ में रहती हैं, भगवान की पत्नियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से आती हैं। और जितने भी भगवान के विविध रूप हैं वो सब श्री कृष्ण से आते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक हमने तो बताया ही, जैसे सीता देवी को दोबारा वनवास में भेजना, ये तो बाद में हुआ ना, राज स्वीकार करने के बाद हुआ। फिर लव कुश का आना, रामायण की गीत गाना सब जगह, स्वयं राम को इसको सुनना, ये सारी घटनाएं तो राज को स्वीकार करने के बाद हुई। फिर बाद में विशेष करके उत्तरकांड में ऐसे कई और कथाएं हैं, खास करके राम के राम राज्य में कैसी अवस्था हुई, लोग कैसे रहा करते थे, उसका भी वर्णन है। फिर साथ साथ में राम राज का अंत, मतलब श्री राम के तिरुभाव की तैयारी कैसे हुई, अगस्त्य मुनि वहाँ आए, लक्ष्मण और राम में क्या समझौता था उसके बारे में, ब्रह्मा जी आए, देवताओं के द्वारा संदेश भेजा कि प्रभु अभी आपकी लीला का समय समाप्त हो गया, अभी आप पुनः वैकुंठ लौट के जाइए, एक रहस्यमय संदेश आया, केवल श्री राम उसको समझ गए कि इसका क्या संदेश का अर्थ है। तो राम ने सोचा अभी लीला समाप्त करने का समय आ गया, और भी जो भी घटनाएँ हुई, अगस्त्य मुनि आए वगैरह वगैरह, और सारी चीज़ें उत्तरकांड में वर्णन है। ये सब भविष्य की घटनाएं हैं जो वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण में लिखी है। फिर आगे चल के शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया मथुरा में जाके, ये सारी बातें, अनेक ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है,
रामचरितमानस कितना प्रामाणिक है?
वैसे ये तो काफी भक्तिमय है ग्रंथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ कहा था कि इसमें कोई मायावाद का एक लेश मात्र कुछ एक मिश्रण है, परंतु किस संदर्भ में प्रभुपाद ने कहा था कि लोग वाल्मीकि रामायण के ऊपर ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, परंतु यदि गौर से तुलसी रामायण को पढ़ा जाए तो इसमें ऐसे कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, कुछ कहा नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हम सम्मान करते हैं तुलसीदास का और उनके रामचरितमानस का भी, परंतु ज़्यादा हम बोलते नहीं। हमारे आचार्यों ने वाल्मीकि मुनि रामायण के ऊपर बहुत कुछ कहा है, इसलिए हम उसी वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही हम चर्चा अधिकतर करते हैं। ठीक है,
अभी भगवान का जैसा अवतार रहते हैं, ऐसा बलराम जी
जैसे श्री कृष्ण से उनके विस्तार आते हैं, श्रीमती राधारानी से उनके विस्तार आते हैं, तो मूल है राधा कृष्ण।
ये कृष्ण की कथा में हम देखते हैं कि कुब्जा भी, जैसे अभी शूर्पणखा है और कुब्जा है, लेकिन शूर्पणखा को दंडित करते हैं और कुब्जा को कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और भगवान किसी भी ऐसे श्लोक है कि किसी भी अगर देश से गए तो भी वो किसी भी भाव से गए तो भी वो उनको मुक्ति देते हैं, लेकिन ये कुब्जा के विषय में ऐसे करते, लेकिन शूर्पणखा को
शूर्पणखा को क्यों दंडित करते हैं, जबकि उन्होंने उनको ये बताया ना कि वो इस भाव से आना चाहते थे लेकिन श्री राम बाध्य थे उनके व्रत के कारण, एक पत्नी व्रत। उसी प्रकार से जैसे दंडकारण्य में जो ऋषिगण थे वो भी श्री राम के प्रति आकर्षित हो गए, तो श्री राम ने कहा कि मैं आपकी इच्छा द्वापर में आके करूँगा, जब आप गोपियाँ बनोगे तब आप माधुरी भाव में मेरी सेवा कर पाओगे, लेकिन इस समय आप पुरुष देह में हो और माधुरी भाव में नहीं कर सकते हमको सेवा, और साथ साथ में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन द्वापर में जब मैं आऊँगा तब आपकी सेवा में स्वीकार करूँगा। तो ऐसे कई घटनाएं हैं कि उन्होंने रामलीला और कृष्ण लीला में बहुत गहरा संबंध है, और अनेक जो लोग रामलीला में थे वो कृष्ण लीला में भी आए, लेकिन वो तो अलग प्रवचन का विषय है, उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे मिथिला की और अयोध्या की जो महिलाएं हैं जिन्होंने श्री राम को देखा वो भी आकर्षित हुई, उनमें से तो कई लोग फिर गोपियाँ बने। साथ साथ में ये जो स्वर्ण की सीताएँ हैं वो भी मूर्तिमान रूप उनके, फिर वो गोपियाँ बन गई। फिर दंडकारण्य के जो ऋषि हैं ये भी गोपियाँ बन गए, ऋषिचारी गोपी। तो रामलीला से बहुत काफ़ी संबंध है कृष्ण लीला का। तो ये धोबी था जिसने अपनी पत्नी से ऐसे कहा राम के बारे में बराबर, फिर वो धोबी बना उधर मथुरा में, जिसका वध फिर कृष्ण ने कर दिया। कंस के कपड़े नहीं दिए ना, बोले मुझे दे दो, बोले नहीं 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 देता, उन्हें मार दिया, तो वही धोबी था वो। उससे उद्धार नहीं किया, कृष्ण के अवतार में उद्धार कर दिया। रचना की और उस समय वो सोच रहे थे कि कौन ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो इस ग्रंथ को या इस रचना को याद कर पाएगा और याद करके सुंदर रूप से गा पाएगा। तो क्योंकि 24,000 श्लोक हैं, उनको कंठस्थ करना इतना आसान काम नहीं है ना, तो कौन है जो ऐसे कंठस्थ कर पाएगा, इतनी शक्तिशाली स्मृति किसकी है जो कंठस्थ करके साथ साथ गाने की कला भी होनी चाहिए, कौन है ऐसे। फिर उनके सामने उस समय तुरंत लव और कुश आए, उन्होंने सोचा हाँ ये दो योग्य हैं बिल्कुल, फिर उनको उन्होंने सिखाया, उन्होंने सुन के मात्र कंठस्थ किया और फिर सब जगह जगह जाके वो रामायण को गाने लगे। इसलिए वे आदि कवि है, आदि कवि बोले जाते हैं वाल्मीकि, और ये आदि काव्य है रामायण, त्रेता युग की बात है, और व्यास जी ने लिखित रूप में किया तो ये द्वापर के अंत में है। ठीक है,
कम बुद्धिमान
स्त्री इस दृष्टि से कि जो भले ज्यादा दर्शन दार्शनिक बातों को गहराई से तत्व से नहीं समझ सकते हैं, उनको उन्हीं चीजों का स्पष्टीकरण इतिहासों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से किया जाता है इसीलिए। परंतु इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कथाएं केवल काल्पनिक हैं, केवल कोई दार्शनिक तत्वों का स्पष्टीकरण करने के लिए हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सारी कथाएं भी सत्य हैं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, परंतु इनके माध्यम से व्यासदेव जी हों या वाल्मीकि मुनि हों, वो हमको बहुत से तत्व सिखलाते हैं और साथ साथ भगवान की कथाओं को सुन के हमारा शुद्धिकरण भी होता है। वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत का स्पष्टीकरण पुराणों और इतिहासों के माध्यम से होता है। पुराण और इतिहास में ज्यादा अंतर नहीं है। इतिहास मतलब रामायण महाभारत, और पुराण मतलब जितने भी पुराण हैं। कि अधिकतर ये देखा जाता है कि पुराण बहुत पुराने समय की कथाएं होती हैं। जब वो उनकी रचना की जाती है तो जिन कथाओं का वर्णन उन रचनाओं में होता है वो बहुत प्राचीन पौराण पुरानी कथाएं होती हैं, इसलिए पौराण पौराणिक कथा पुराण कहते हैं उसको। लेकिन इतिहास की कथा जो है, जब रचना की जाती है तो वो घटना चल रही होती है या अभी अभी समाप्त हो चुकी होती है, जैसे रामायण और महाभारत। केवल इतना ही अंतर है, बाकी इतिहास पुराण में कोई अंतर नहीं। हाँ हो सकता है, क्योंकि जब हम कहते हैं बलराम जी के बारे में, आज सुबह हम बोल रहे थे कि सतयुग में द्वापर युग के लोगों में कितना अंतर था शारीरिक दृष्टि से, और द्वापर युग के लोगों में और कलयुग में कितना अंतर है, उसी तरह से सारे भूगोल में भी काफी अंतर हुआ होगा। और आजकल विज्ञान की दृष्टि से भी मानते हैं, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट बोलते हैं इसको, आपने सुना है ना, जियोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सारे पृथ्वी लोक के ऊपर जो भूमि है वो हटती रहती है, और पहले जो भूमि थी वो इस प्रकार से नहीं थी, काफी अंतर था, ऐसे आजकल भी वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। तो आजकल जो परिस्थिति है वो समय थी नहीं थी कैसे थी, ये हम सब नहीं जान सकते इस समय, क्योंकि वो इतने लाखों साल पुरानी बात है। इसलिए आजकल जो हमारी इंद्रियां हमको बताती हैं उनका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जिस समय का वर्णन है उसमें आज में कितना अंतर हुआ है वो हम कह नहीं सकते। इसलिए हम अभी के समय में हमारे इंद्रियों के ऊपर श्रद्धा रखने के बजाय, और उस इंद्रियों के से प्राप्त हुए ज्ञान के ऊपर कुछ अनुमान लगाने के बजाय, हमें शास्त्रों में श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि उस समय की बात ऐसी घटना है। तो जैसे भूगोल की व्यवस्था उस समय थी उस हिसाब से ये वर्णन रामायण में पढ़ने में आता है। चाहे किस तरह का परिवर्तन हुआ होगा भूगोल में, क्या है वो हम कह नहीं सकते। और कभी-कभी ऐसे होता है, क्यों, भगवान अपनी कथाओं की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहते हैं। कैसे रक्षा करते हैं अपनी कथाओं की, पास ऐसे कोई बातें आती है और हम लोग हमारे इंद्रियों के से प्राप्त हुए ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर संशय हो जाता है। तो संशय आत्माओं को दूर रखने के लिए ऐसे कई बार होता है। मतलब ऐसे नहीं कि कथाओं में जानबूझकर ऐसे कुछ बताया जाता है, लेकिन भगवान की कथाओं की योजना भी ऐसी होती है, अश्रद्धालुओं को दूर रखते हैं ऐसे। क्योंकि जो अश्रद्धालु लोग होते हैं वो अपने भौतिक दृष्टि से देखते हैं, हर चीज अपने इंद्रियों के ऊपर आधारित होती है। अरे ये तो केवल 100 योजन, मतलब 800 मील आजकल देखा जाए तो इतना ही कर अंतर है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं ना, फिर ये माइथोलॉजी, ये सब दंत कथा है, काल्पनिक है। क्योंकि वो उनका निर्णय लेने का जो आधार है वो है ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान। क्योंकि इसके पहले कैसे परिस्थिति थी हम ठीक से नहीं बता सकते, कितने अंतर किसमें था क्या था। जुलता है क्योंकि वो केवल 5000 साल का है, और रामायण के त्रेता युग में कितना परिवर्तन हुआ है नहीं है हमें नहीं मालूम, और हुआ नहीं भी हुआ होगा तो अब इस समय की क्या परिस्थिति है उस हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं अनुमान। और ये महेंद्र पर्वत एक्चुअली कहाँ है, जिस यहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी, ये भी एक दूसरी बात है। हमारे आचार्य ने भी इसके ऊपर ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं किया है, इसलिए जो है हमें शास्त्रों के बातों को विश्वास कर लेना है। क्योंकि ज़्यादा हम यदि अनुमान लगाते जाएंगे, जैसे सूरज है और चांद है, इतना भागवत के पंचम स्कंद में हम हमारे इंद्रियों के आधार पर ज्ञान से हम तुलना करने जाएंगे तो विरोधाभास जैसे लगता है, फिर संशय उत्पन्न होता है। और जाम्बवान वगैरह जो भी कहते हैं वो ठीक है, एक एक कहते हैं हम 100 योजन दूर हम छलांग मार के जा सकते हैं, कोई कहते हैं हम 800 योजन जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो हो सकता है कि जिस स्थान से वो थे उतने योजन दूर हुआ होगा,
सेतु तो है ना महाराज।
हाँ सेतु ऐसा कहते हैं, वो सेतु है, वास्तव में नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, हमारी श्रद्धा इंद्रियों के ऊपर आधारित रहने वाले प्रमाणों से संबंधित नहीं है। जैसे कई लोग अभी आजकल बोल रहे हैं कि द्वारका नगरी हमें समुद्र के नीचे मिली है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जिन लोगों की श्रद्धा अल्प है उनके लिए ये सब ठीक है, हाँ अच्छा मिला है, ओ तो फिर ठीक सत्य होगा ये। लेकिन ऐसे प्रमाण के ऊपर हमारी श्रद्धा निर्भर नहीं है। आज वैज्ञानिक लोग ये खोज निकालते हैं, कल दूसरा कुछ खोज निकालेंगे, क्या निकालें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ खोज के निकाला है, तो जिनकी श्रद्धा कम है उनके लिए उनकी श्रद्धा थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा रहता, ठीक है ठीक, हाँ ऐसा ऐसा। लेकिन सच्चे जो भक्त होते हैं वो ऐसे चीज़ों के ऊपर, ऐसे प्रमाण के ऊपर निर्भर नहीं होते। यदि हम इस बात को आगे कहते हैं कि हाँ यही है, इससे यदि सबकी श्रद्धा बढ़ती है और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने राम ने सेतु बांधा था, इसको विश्वास करते हैं, तो अच्छी बात है। परंतु यदि ये नहीं भी है, समझ लीजिए सेतु जो आजकल लोग कह रहे हैं कि ये सेतु है, यदि ये नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी श्रद्धा उस पर निर्भर नहीं है। हमारी श्रद्धा शास्त्रों के कथन पर निर्भर है। अभी उन्होंने सैटेलाइट से इधर उधर से कुछ चित्र निकाले हैं कि यहाँ कुछ है पानी के अंदर, तो यदि ऐसे पिक्चर तस्वीर नहीं मिले होती तो हम क्या नहीं विश्वास करते इसमें? फिर भी विश्वास करते। आज कोई तस्वीर आई है, कुछ लोग बोल रहे हैं, एक वाद हो गया है, लेकिन चाहे वो तस्वीर हो या न हो, हमारा विश्वास है राम गए थे, राम ने सेतु बांधा था, ठीक है। कितने लीलाएं हैं जो कि स्वर्ग लोक में हुई, ऊपर के लोकों में हुई, सुतर लोक में भी हुई, ऐसे भी कई वर्णन है। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी लोक पर सब लीलाएं हुई। जैसे कृष्ण गए अमरावती में, इंद्र की राजधानी में, वहां से पारिजात वृक्ष लेके आए, ये तो स्वर्ग लोक की लीला है ना। और ऐसे कितने और चीजें हैं, वामन देव का जन्म स्वर्ग लोक में हुआ, फिर वो यहाँ आए बलि महाराज के पास, तो सारे ब्रह्मांड की लीलाएं हैं ये।
बलि महाराज पृथ्वी में था या दूसरा लोक में था? बलि महाराज पृथ्वी में था या दूसरा लोक में था?
ऐसे बताया जाता है यहाँ थे, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पे माहिष्मतीपुरी में उनका यज्ञ, उनकी यज्ञ स्थली थी, जिस समय वामन देव उनके सामने प्रकट हुए। कई बोलते हैं स्वर्ग लोक में हुआ, कोई बोलते हैं यहाँ हुआ, तो जो भी है वो अलग अलग ब्रह्मा जी के दिवस में अलग अलग नरसिंह प्राकट्य भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कथाएं अनेक हैं। मूल बात है कि चाहे वो आंध्रा में हुए या कहीं भी हुए, वो प्रकट हुए और उन्होंने ऐसी लीला की। तो हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हम देखते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि यही स्थान है। क्योंकि ऐसे स्थल पुराण होते हैं, स्थल पुराणों से हमें ये ज्ञान मिलता है। ठीक है, कोई संशय नहीं ना? ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
श्री श्री नित्याय गौर हरि की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय।